नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक है, आत्मबल संपादन ही सर्वोपरि लक्ष्य हो। ये उद्बोधन इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान है, हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, फिर भी अक्सर दुख और अशांति में क्यों रहते हैं।
बिल्कुल, और गुरुदेव इसी पहेली को सुलझाते हैं। वो संकेत करते हैं कि मनुष्य मतलब अपनी जो अद्भुत क्षमताएं है ना, उनको पहचानता नहीं, या फिर उनको विकसित करने, सही दिशा देने में कहीं ना कहीं चूक जाता है।
हाँ, और इसी वजह से दुखी है।
जी, और फिर वो सुख शांति के लिए बाहर भटकता है, स्वास्थ्य, धन, विद्या, इनके पीछे भागता है, जैसे वो मृग तृष्णा होती है ना वैसे, जबकि असली समाधान तो वो भीतर है।
तो चलिए इन्हीं बाहरी बलों से शुरू करते हैं, जैसे स्वास्थ्य बल। गुरुदेव की एक चेतावनी है इस पर कि आजकल लोग विटामिन्स या दूसरी कृत्रिम चीजों से ताकत पाने की कोशिश में समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं।
हाँ, ये बड़ा अजीब विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि हम सेहत खरीद लेंगे, पर असल में वो जो शरीर का प्राकृतिक संतुलन है उसे बिगाड़ देते हैं। शरीर की अपनी एक अद्भुत प्रतिरोधक शक्ति है ना?
बिल्कुल।
गुरुदेव का जोर हमेशा प्राकृतिक जीवन शैली पर रहा,
मतलब संयम आहार विहार में।
हाँ, आहार विहार में संयम, बीमारी में धैर्य रखना, और जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जल, मिट्टी, धूप, इनका उपयोग। और उन्होंने तो स्वास्थ्य बल के लिए गायत्री अनुष्ठान जैसे आध्यात्मिक उपायों की भी बात की है। उनका मानना था कि प्रकृति पर, शरीर की अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए।
सही बात है। अच्छा, स्वास्थ्य के बाद आता है विद्या बल। मनुष्य बाकी प्राणियों से अलग क्यों है? उसकी बुद्धि, उसका विवेक। गुरुदेव के लिए विद्या का क्या अर्थ था?
उनके लिए विद्या वो सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, वो थी असली स्थायी शक्ति। देखिए, तन का बल, धन का बल, ये तो आज है कल नहीं, पर ज्ञान वो हमेशा साथ रहता है, सम्मान दिलाता है।
हाँ, ज्ञानवान की पूजा होती, ऐसा कहा भी गया है।
बिल्कुल, और इसी ज्ञान और विद्या के बिना कोई भी उन्नति, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक, संभव ही नहीं है। इसीलिए वो बहुत आग्रह करते थे कि हर घर में एक छोटा सा पुस्तकालय जरूर हो और उनका साहित्य पढ़ें, जिसमें उन्होंने अपने प्राण और संवेदनाएं डाल दी, ऐसा वो कहते थे।
और अब आते हैं धन बल पर। आज के जमाने में तो शायद इसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, पर गुरुदेव का नजरिया तो बिल्कुल अलग था।
हाँ, बिल्कुल अलग। वो इस सोच को ही चुनौती देते थे कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी। धन एक शक्ति है, जरूरत है जीवन चलाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, पर सवाल ये है कि वो आया कहाँ से और जा कहाँ रहा है।
मतलब ईमानदारी का पैसा।
जी, ईमानदारी से कमाया हुआ और अच्छे कामों में, सदुपयोग में लगाया गया धन ही शुभ है। सिर्फ उसे बटोरते जाना, वो जो तृष्णा है ना, वो तो एक अभिशाप है। गुरुदेव उसे मिट्टी के ढेले जैसा कहते थे।
और ये अगली पीढ़ी पर भी असर डालता है।
हाँ, ये शोषण बढ़ाता है, समाज में कड़वाहट लाता है और बच्चों के संस्कार भी बिगाड़ता है। तो उनका साफ कहना था, धनवान होने से कहीं ज्यादा जरूरी है संस्कारवान बनना।
तो स्वास्थ्य, विद्या, धन, ये सब साधन हैं, उपयोगी हैं, पर इनकी एक सीमा है। गुरुदेव इन सबसे ऊपर आत्मबल को रखते हैं।
जी हाँ, आत्मबल, यही वो अंदर की ताकत है, वो आंतरिक शक्ति जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने सबसे ऊंचा माना, इसी से सब कुछ पाया उन्होंने।
अच्छा, तो भौतिक बल और आत्मबल में मुख्य अंतर क्या हुआ?
देखिए, भौतिक बल से आपको भौतिक साधन मिलेंगे, पैसा, सुविधाएं, पर आत्मबल से मिलती है आत्मिक उन्नति, मन की शांति, यहाँ तक कि दैवीय अनुग्रह, भगवत कृपा।
लेकिन ये आत्मबल मिलता कैसे है? इसके लिए क्या करना होता है?
इसके लिए चाहिए सबसे पहले तो पक्का इरादा, संकल्प, फिर संयम, और अपने आदर्शों के प्रति एक गहरी श्रद्धा और टूट विश्वास। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे फूटे बर्तन का, जैसे उसमें दूध नहीं टिकता, वैसे अगर मन में जलन, गुस्सा, लालच जैसे विकार भरे हैं, मतलब कषाय कलमश जिन्हें वो कहते थे, तो आत्मबल टिक ही नहीं सकता।
तो पहले खुद को सुधारना होगा।
बिल्कुल, पहले अपना पात्र साफ करना होगा। और इसका रास्ता क्या है? अध्यात्मवादी नजरिया अपनाना।
पर गुरुदेव का अध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ कर्मकांड तो नहीं था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। उनके लिए अध्यात्म का मतलब था व्यक्ति के सोचने का ढंग, उसका चरित्र, उसके आदर्श, उसका व्यवहार, इन सब को ऊंचा उठाना। उन्होंने कुछ सूत्र दिए थे, बड़े सरल। सादा जीवन, उच्च विचार,
आत्मवत सर्वभूतेषु,
धन को मिट्टी के ढेले समान समझना, और मातृवत परदारेषु, पराये स्त्री को माता के समान देखना। ये जीवन जीने के सिद्धांत है, सिर्फ पूजा के नियम नहीं।
और एक बहुत ही रोचक बात थी कि गुरुदेव आत्मबल को एक तरह का व्यापार भी कहते थे।
हाँ, ये उनकी बात कहने की एक अनोखी शैली थी। वो कहते थे कि आत्मबल का व्यापार सबसे मुनाफे का सौदा है। सोचिए, गुरु नानक, बुद्ध, द्रौपदी, हनुमान, एकलव्य, अर्जुन, जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण बने, ये सब किसके उदाहरण हैं? आत्मबल के ही तो हैं।
वो इसे भगवान की लिमिटेड कंपनी कहते थे।
जी, और सबको उसमें हिस्सेदार, भागीदार बनने का न्योता देते थे। कहते थे कि इसकी शक्ति सीधे भगवान के पावर हाउस से आती है, ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है।
अच्छा, तो इसे पाने के, इस व्यापार में सफल होने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी उन्होंने जरूर बताए होंगे, जैसे आहार के बारे में।
हाँ, आहार पर तो बहुत ही ज्यादा जोर था उनका। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये सिर्फ कहावत नहीं, सच्चाई है। पवित्र भावनाओं के लिए सात्विक शुद्ध आहार बहुत जरूरी है। वो कहते थे कि होटल का खाना, जूठा खाना, इन सब से बचना चाहिए। उन्होंने खुद जौ की रोटी और छाछ पर जीवन बिताया।
संयम की बात भी आई थी पहले, शारीरिक और मानसिक दोनों।
हाँ बिल्कुल, शारीरिक संयम में ब्रह्मचार्य का पालन, और मानसिक संयम मतलब मन पर नियंत्रण, वासनाओं पर विजय। फिर इंद्रियों का संयम, खासकर जीभ का। अभक्ष्य न खाना, कड़वा न बोलना, किसी की चुगली न करना।
और स्वाध्याय, पुस्तकें पढ़ना।
जी, स्वाध्याय यानी निरंतर अच्छा साहित्य पढ़ना, जिससे विचार शुद्ध हो, ज्ञान बढ़े। उन्होंने इसके पांच चरण भी बताए थे। माला के विधान को समझना यानी व्यक्तित्व का परिष्कार, नई आरती यानी समर्पण भाव, फिर आहार का नियंत्रण, शारीरिक मानसिक संयम और स्वाध्यायशील बनना, ये सब मिलकर आत्मबल बढ़ाते हैं।
तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट संदेश है, स्वास्थ्य, विद्या और धन, ये सब अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं, पर इनकी सीमाएं हैं। जीवन में वास्तविक और स्थायी सुख, शांति और उन्नति का आधार तो वो आत्मबल ही है।
बिल्कुल, और यहीं पर एक विचारणीय बिंदु आता है। गुरुदेव ने साफ किया कि अध्यात्म सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि अंदर का सुधार है, चिंतन और चरित्र का विकास है। तो हम सब के लिए सोचने की बात ये है कि आज, अभी हम अपनी इस आंतरिक शक्ति को, इस शुद्धि को बढ़ाने के लिए कौन सा एक छोटा सा पर वास्तविक कदम उठा सकते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सच में।
जैसे
शायद अपने भोजन में थोड़ी और सात्विकता लाना, या आज का दिन बिना किसी की निंदा किए बिताने का संकल्प लेना, या बस 5 मिनट शांति से बैठकर अपने विचारों को देखना कि वो कहां जा रहे हैं। ये बहुत छोटे कदम लग सकते हैं, पर आत्मबल बढ़ाने की यात्रा वो यहीं से शुरू होती है।